आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार ऑस्ट्रेलिया, मैं स्वाति शर्मा SBS हिंदी के दैनिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ आज के दिन यानी शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को। बहुत कुछ लाई हूँ आज के प्रोग्राम में मैं आपके लिए, पर प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुइवुरुन लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉर स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी आदरपूर्वक सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम की रूपरेखा पर और फिर बताऊंगी आज का खास सवाल। सबसे पहले होंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत की मुख्य खबरें, फिर एक अंश चाइल्ड केयर सेंटर्स के लिए होने वाले नए सुरक्षा सुधारों पर, और एक खास अंश होगा कि कैसे भारतीय प्रवासियों की औसतन रोजगार दर बाकी मूल के प्रवासियों से ज्यादा है और किस प्रकार यह ऑस्ट्रेलिया को कई तरीकों से समृद्ध बनाता है। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरे विश्व भर में बहुत से समुदायों ने गणपति बप्पा का अपने घरों में स्वागत किया, पर किस प्रकार अपने संस्कार और परंपराएं लोग अपनी अगली पीढ़ी में बांट रहे हैं इस पर भी होगी एक खास प्रस्तुति, कुछ गीत संगीत भी होगा और आज हम घोषणा करेंगे परम सुंदरी फिल्म के पासिस के विजेताओं की। जी हाँ, तो उसके लिए भी बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज के शो में खबरों से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ रहेगा, पर उसके साथ साथ आपके मैसेजेस भी इसमें खास रंग भर देंगे। तो आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे? जी हाँ, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले एक दिन के लिए तो सबसे पहला फैसला आपका क्या होगा? अपने जवाब हमें जल्दी से लिख भेजिए 0439-799-767 पर। तब तक हम नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर।
नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। विक्टोरिया पुलिस ने पोरपनका में दो पुलिस अधिकारियों की हत्या की जांच के तहत दो लोगों को हिरासत में लिया है। 42 वर्षीय एक महिला और 15 वर्षीय एक लड़के को विक्टोरिया के क्षेत्रीय शहर में एक संपत्ति से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। 56 वर्षीय डेजी फ्रीमैन की तलाश अब चौथे दिन भी जारी है। फ्रीमैन मंगलवार 26 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व में पोरपनका के पास झाड़ियों में भाग गया था, जब उस पर डिटेक्टिव लीडिंग सीनियर कांस्टेबल नील थॉम्पसन और सीनियर कांस्टेबल वदिम डेवार्ट की हत्या का आरोप लगा। इस साल की शुरुआत में वेस्टर्न सिडनी की एक महिला के कथित अपहरण और हत्या के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। पुलिस का आरोप है कि 29 वर्षीय इस व्यक्ति ने सिडनी के दक्षिण पश्चिम स्थित बैंक्सटाउन में 45 वर्षीय महिला का उनके 8 और 15 वर्षीय बेटों की मौजूदगी में बंदूक की नोक पर अपहरण करवाया। हमले के दौरान छोटे बेटे के सिर पर कथित रूप से बेसबॉल बैट से प्रहार किया गया और महिला जल्द ही एक जली हुई कार में मृत पाई गई। सांसद अमेंडा रिश्वर्थ ने गुरुवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य कामगारों के लिए पेनल्टी रेट्स और ओवरटाइम भुगतान की सुरक्षा करना है। जहां यूनियनों ने इस कदम का स्वागत किया है, वहीं कुछ उद्योग समूहों ने इस विधेयक पर चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया का पहला चंद्र रोवर दशक के अंत तक चंद्रमा पर मिशन पर जाएगा। एजेंसी का कहना है कि रूवर नामक इस रोवर की चंद्रमा पर 14 पृथ्वी दिनों तक संचालित होने की उम्मीद है। मिनियापलिस के एक चर्च में गोलीबारी में मारे गए दो बच्चों में से एक के पिता ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। 8 वर्षीय फ्लेचर मर्कल की मौत तब हुई जब एक हमलावर 3 बंदूकों से लैस होकर एक कैथोलिक चर्च की खिड़कियों में से गोलीबारी करने लगा, जहां छात्र मास में शामिल हो रहे थे। इस गोलीबारी में एक 10 वर्षीय बच्चा भी मारा गया और 17 अन्य घायल हुए। वहीं भारत के जम्मू में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है और शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। डीडी न्यूज से मिली इस खबर के अनुसार श्राइन बोर्ड ने एक घोषणा करके श्रद्धालुओं को सूचित किया कि मार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके कारण तीर्थयात्रा अगले दो दिनों तक स्थगित रहेगी। भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर मंगलवार को भूस्खलन की घटना हुई थी। 29 अगस्त 2025 के लिए समाचारों में बस इतना ही। और खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एसपीएस हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर एसपीएस हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद। खबरों के बाद चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों ने चाइल्ड केयर सेंटर्स के लिए नए सुरक्षा सुधारों पर सहमति जताई है, जिसमें सीसीटीवी का ट्रायल, राष्ट्रीय कर्मचारी रजिस्टर और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध जैसी चीजें शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य है कि बच्चों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और हालिया दुर्व्यवहार के मामलों के बाद अभिभावकों का भरोसा वापस पाया जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त प्रशिक्षण और निरीक्षण के जरिए नियमों के पालन को सुनिश्चित भी किया जाएगा और बच्चों की सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। इसी पर आइए सुनते हैं यह रिपोर्ट।
देशभर के चाइल्ड केयर सेंटर्स में अब सीसीटीवी लगेंगे और कर्मचारियों का बनेगा राष्ट्रीय रजिस्टर। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देशभर के सैकड़ों चाइल्ड केयर सेंटर्स में अब सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही सरकार ने चाइल्ड केयर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बीते शुक्रवार को सिडनी में हुई एक अहम बैठक में केंद्र, राज्य और संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों ने इस योजना पर सहमति जताई। ये कदम मेलबर्न के एक चाइल्ड केयर वर्कर जोशुआ डेल ब्राउन के खिलाफ सामने आई यौन शोषण के मामलों के बाद उठाया गया है। इस योजना के अनुसार अक्टूबर या नवंबर से सीसीटीवी ट्रायल शुरू होगा। शुरुआत में 300 छोटे और मध्यम स्तर के सेंटर्स शामिल होंगे। ये पूरी योजना केंद्र सरकार के $179 मिलियन पैकेज से चलाई जाएगी और कर्मचारियों की जानकारी के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसका पायलट दिसंबर में और पूर्ण क्रियान्वयन फरवरी 2026 से होगा। ये पूरी योजना केंद्र सरकार के $189 मिलियन पैकेज से चलाई जाएगी और कर्मचारियों की जानकारी के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसका पायलट दिसंबर में और इसका पूर्ण क्रियान्वयन फरवरी 2026 से होगा। इसी के साथ साथ अन्य बड़े फैसलों में सितंबर से मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू होना, बाल सुरक्षा प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होना और 1600 अतिरिक्त निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किए जाना शामिल हैं। इस मुद्दे पर संसद में विपक्षी नेता सुजन ले ने कहा,
माय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वर्क पॉजिटिवली एंड प्रोएक्टिवली ऑन दिस इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट इश्यू। आई कांट थिंक ऑफ मेनी इश्यूज इन माय टाइम इन दिस पार्लियामेंट दैट हैव मेड मी फील एज फिजिकली सिक।
और वहीं शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने संसद में कहा कि फिर से अभिभावकों का भरोसा जीतना अनिवार्य है।
We have to do everything that we can to ensure the safety of our children when they walk or when they're carried through the doors of a childcare center. This is the biggest weapon that the Australian government has to wield here.
ब्रिस्बेन निवासी नितिका सेठी, जो कि एक 3 साल की बच्ची की माँ है, वो मानती है कि बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है।
मेरी भी 3 साल की बेटी है और मैं उसको चाइल्ड केयर रोज छोड़ के अपने वर्क प्लेस पे जाती थी और कुछ डर रहता था दिल में उसकी सेफ्टी को लेके, उसकी सिक्योरिटी को लेके, कुछ इमरजेंसी कम्युनिकेशंस को लेके। तो जब से मुझे इन नए रिफॉर्म्स का गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंसमेंट का पता चला है तो मैंने बहुत रिलीफ फील करा है। जो न्यूज चाइल्ड केयर सेंटर्स के बारे में पहले आई उससे पेरेंट्स इतना सिक्योर फील नहीं कर सकते कि बच्चों को उन्होंने सेफ हैंड्स में छोड़ा है व्हेन एवर इट्स देयर वर्किंग आवर्स। बाहर से ऑब्जर्व सेफ और एंगेजफुल एनवायरमेंट बच्चों के लिए ऑब्जर्व करते हैं, बट एक्चुअली हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ फील कर रहा है या नहीं। बट अब जो रिफॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी होने जा रहे हैं वो रियली हेल्पफुल होंगे इन चीजों को ट्रैक करने में कि हमारा बच्चा वहाँ पे कनेक्टेड और सेफ फील कर रहा है।
गौरतलब है कि सीसीटीवी लगाने को लेकर विक्टोरिया की एक समीक्षा में स्टाफ यूनियनों और माता पिता ने गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस पर मंत्री क्लेयर ने आश्वासन दिया कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैमरे सही जगहों पर लगाए जाएं और फुटेज को सुरक्षित रखा जाए ताकि ये हैकर्स के लिए शिकार न बन जाए। सरकार ने उन 37 चाइल्ड केयर सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जो पिछले 7 सालों से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। अब उन्हें 6 महीने का समय दिया गया है। सुधार न करने पर उनकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति को एक राज्य में वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक से रोका गया है तो वह पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि एक राष्ट्रीय चेक प्रणाली लागू करने की कोई योजना नहीं है और हर राज्य अपनी प्रणाली ही जारी रखेगा। ये सुधार उस भरोसे को फिर से कायम करने की कोशिश है जो हालिया घटनाओं के बाद कमजोर पड़ा है। SBS हिंदी से ज्योतिका की रिपोर्ट।
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद अब वक्त है पहले अंतराल का, पर आज के मेरे सवाल के जवाब आप भेजना मत भूलिए। सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले फैसला आप क्या लेंगे, कोई सुधार या फिर कोई बदलाव या फिर कोई यात्रा या फिर कुछ और। अपने जवाब भेजिए मुझे, मेरा नंबर है 0439799767। आप जल्दी से अपने जवाब लिख भेजिए और मैं जल्दी से वापस आकर मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है SBS हिंदी पर, मैं हूँ स्वाति शर्मा। तो चलिए ब्रेक के बाद सफर को आगे बढ़ाते हैं। आपके जवाब मेरे पास आ रहे हैं जिन्हें मैं कुछ ही देर में पढ़ूंगी, पर अभी हम सुनते हैं विश्व रत्न के हवाले से भारत की खबरों का हाल इंडिया रिपोर्ट में।
भारत और जापान अपने रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज टोक्यो में हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशाबा के साथ बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, AI, स्वच्छ ऊर्जा, दुर्लभ खनिज को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के साथ ही रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के लिए चीन रवाना होंगे। और अब चर्चा घरेलू राजनीति की। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होता जा रहा है। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। चुनाव आयोग के साथ साथ वह भाजपा पर भी आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के विरुद्ध विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए गुरुवार को उन्होंने कहा,
बीजेपी के 2-3 MPs को जानता हूं, मेरे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। यहां पे तो भाई 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है।
भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दरभंगा में यात्रा के एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस समर्थक द्वारा गाली दिए जाने का आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इसको लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए कहते हैं,
दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है।
गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा,
वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वह गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथा कथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथा कथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जारी यात्रा को भरपूर समर्थन मिलने की बात कही है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि बिहार से पूरे देश में संदेश जा रहा है।
बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को, वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में।
बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने राज्य में विकास न होने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास काम गिनाने को कुछ भी नहीं है।
20 साल से आपकी बिहार में सरकार है एनडीए की, 11 साल से आप केंद्र में हैं, लेकिन आप बिहार मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 दशक से आप बिहार पे शासन कर रहे हैं और 11 साल से देश पर, तो अगर आपने किया तो उस मॉडल को आप में का जिक्र करने में आपको शर्म क्या आ रही है? क्यों? क्योंकि आपने इन 2 दशक में और 1 दशक में सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई।
इधर बिहार की राजनीति में नई बनी पार्टी जन सुराज ने प्रमुख दलों की आलोचना की है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर कांग्रेस भाजपा के बीच जारी बयानबाजी को लेकर कहते हैं
कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, हम लोग का पलायन बंद हो, इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे दिया, मोदी जी आए राहुल जी को गाली दे देंगे, उससे क्या मतलब है भाई?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने साफ किया है कि वह सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता। भाजपा पर अक्सर आरएसएस के एजेंडे और निर्देश पर काम करने का आरोप लगता रहा है। इस धारणा को गलत बताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं,
सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है, मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है, इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या?
और अंत में चर्चा मौसम की। उत्तर भारत में कई नदियां उफान पर हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ से हालात बन गए हैं। पंजाब के कई गांव में बाढ़ के चलते भारी नुकसान हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। राज्य में सतलज, व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। इससे लगे गांवों और कृषि क्षेत्र में पानी भर चुका है। जम्मू में भी भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से आए दिन बादल फटने की खबर आ रही है, जिससे जान माल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड के चमोली से आज सुबह बादल फटने की खबर आई है। केदार घाटी में पुल बह गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आगे चलकर प्रोग्राम में मैं इस हफ्ते के गिव अवे के विजेताओं की घोषणा भी करूंगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। पर फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों का औसतन रोजगार दर भी बाकी मूल के प्रवासियों से काफी आगे है। एक रिपोर्ट की सहलेखक और डीकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संतोष जटराना ने SBS हिंदी को बताया कि भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध करता है। आइए सुनते हैं इति दीवान की यह रिपोर्ट।
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक नई रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2006 से अब तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या में 3.7 गुना वृद्धि हुई है। इसका बड़ा हिस्सा नए प्रवासियों को जाता है जो युवा हैं, शिक्षित हैं और सक्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं इस रिसर्च की सह लेखक और डीकन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संतोष जटराना जी से। अच्छा, रिपोर्ट ये कहती है संतोष जी कि 68% भारतीय प्रवासी पहले से ही हायर एजुकेशन करके आते हैं, तो क्या ये उनके ऑस्ट्रेलिया में आसानी से बसने में मदद करता है?
डेफिनेटली, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उनका दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा है, और इधर ऑस्ट्रेलियन बोर्न या दूसरे माइग्रेंट्स के मुकाबले इंडियंस का एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है।
जी, ऑस्ट्रेलिया का औसत रोजगार दर 64% है। वहीं इस रिपोर्ट में लिखा है कि 85% से ज्यादा भारतीय प्रवासी नौकरी कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के औसत से ऊपर है, तो इसके पीछे का क्या कारण है?
देखिए, हालांकि इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है, ऊपरी तौर पे भारत में जन्मे प्रवासियों की श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, 85% जो तुमने कहा, तो पहली नजर में यह एक आर्थिक जुड़ाव का एक मजबूत संकेतक है, लेकिन और इसके पीछे अगेन जो कंपोजिशनल फैक्टर्स हैं कि वो यंग हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, और आईसीटी में उनका जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें उनकी भागीदारी ज्यादा, लेकिन अगर हम दूसरी तौर पे अगर हम दूसरे सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करें, सपोज हम वो सब समान कर दें, ऑस्ट्रेलियन दूसरे माइग्रेंट या ऑस्ट्रेलियन बॉर्न या इंडियन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर इमर्ज होगी, जो कि रिपोर्ट में वो सब हमने दिखाया है। तो जब वो उसको जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में जन्मे जो प्रवासियों को किस समान प्रोफाइल वाले अन्य लोगों की तुलना में उनकी मैनेजेरियल और प्रोफेशनल रोल्स में कम भागीदारी है। ज्यादातर वो जो है लोअर स्टेटस ऑक्यूपेशन में ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं, जैसे कि मशीनरी ऑपरेटर्स हैं या ड्राइवर्स हैं। तो ये सब चीज इशारा करती है कि बैरियर टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, डिस्पाइट कि वो हाई स्किल्ड है और उनकी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। सो ओवरऑल एग्रीगेट लेवल यस, 85% दे आर एम्प्लॉयड, हायर देन द नेशनल एवरेज, लेकिन हम दूसरी उस पे देखें उसको तो उनकी रिप्रेजेंटेशन दूसरे मैनेजेरियल प्रोफेशन में कम है।
अच्छा, एक और चीज इस रिपोर्ट से सामने आती है कि भारतीय प्रवासियों में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ रही है, तो क्या आप कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के उदाहरण दे सकते हैं जिनका सफर ऑस्ट्रेलिया में प्रेरणादायक रहा है?
फॉर आई गिव द एग्जाम्पल, अगेन रिपोर्ट में एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन अगेन इसमें भी अगर आप देखें तो ओनर मैनेजर्स राइट, वो जो इंडियन बॉर्न्स हैं स्टिल दे आर लेस लाइकली टू बी ओनर मैनेजर कम्पेयर टू ओवरऑल माइग्रेंट्स और ऑस्ट्रेलियन बॉर्न, फॉर एग्जाम्पल 11% के वर्सेज 14%, सो 11% ऑफ इंडियन बॉर्न दे आर ऑनर मैनेजर्स कम्पेयर टू 14% और अदर्स। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ देखेंगे तो 30,000 इन 2016 से 50,000 हो गई है, तो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है लेकिन स्टिल कम है। इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हमने रिपोर्ट में कवर किया है, केस स्टडी हमने कवर की है ईशा ओब्राय की, जो कि जिन्होंने की लियोरा हेल्थ केयर को एस्टेब्लिश किया था 2008 में, और अब वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में लियोरा हेल्थ केयर, एजिड केयर, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को देखती है, इनको ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू का बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर मल्टीपल ईयर्स उनको अवार्ड मिला है। एंड अगर आप उनकी स्टोरी देखें तो दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि हाउ इनिशियली शी डिड नॉट लाइक इट एंड यू नो देन हाउ शी गॉट कनेक्टेड टू इंडियन रूट्स एंड देन दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यू नो लियोरा हेल्थ केयर।
क्या भारतीय प्रवासी अपने व्यवसायों के माध्यम से, चाहे वो मैनेजरियल लेवल हो चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक या सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत कर पा रहे हैं? कहाँ पर है भारतीय प्रवासी जब इन रिश्तों की बात आती है? तो
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो रिपोर्ट जो हमने की है ना, ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से बहुत डिफरेंट है, और ये बेसिकली ये हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं जिसमें कि दोनों कंट्रीज के बेनिफिट हैं इसमें. यू नो, अगर आप देखेंगे तो इंडियंस यहाँ पे दे कंट्रीब्यूट इक्वली टू टैक्स. ट्रेड में भागीदारी आप देखेंगे, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ साइड्स दे आर इम्पोर्टेंट एंड पर्टिकुलरली आफ्टर दिस ओसीआई कार्ड. लेकिन इसका उद्देश्य जो है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस वाज कि जो प्रवासियों के बीच के संबंध को मजबूत करना और ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में भारत के विकास में निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहित करना. तो दे आर ए ग्रेट लिंक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. You know, and they provide all sorts of, you know, not only economic, I will emphasize the cultural links as well. Australia is a multicultural society, and if you see when this report was launched by Tim Watts, he mentioned that, you know, apart from the economic benefits, cultural benefits should not be undermined.
चलिए एक आखिरी सवाल, भारतीय प्रवासी समुदाय का ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का भविष्य आपको दिखाई देता है?
मुझे तो लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि और ये मैं इस बेस पे कह रही हूँ कि ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विशाल प्रवासी समुदाय है. दो इट इज वेरी डाइवर्स, विच इज ए गुड थिंग, वेदर लैंग्वेज और रिलीजन और व्हाटएवर, लेकिन दे आर हाईली एजुकेटेड, जो कि दे हैड कम थ्रू इंटरनेशनल यू नो एजुकेशन के मीडियम से आए हैं. लेकिन दे आर रिप्रेजेंटिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. So I feel that in future they are going to be very important just by the simple fact they are the biggest, you know, Parvasi samudaya. Young hain wo log, and then they are highly educated. So Jee. There is lot of opportunities, but as well as challenges for Australia that they capture this, you know, to their benefit and to the benefit of the diaspora.
Jee. Chaliye, bahut achha laga aapse baat karke. SBS Hindi se baat karne ke liye bahut bahut dhanyawad.
दोस्तों, अगर आप प्रोग्राम में कुछ देरी से जुड़े हैं और अगर आप हमारी कोई रिपोर्ट, न्यूज या इंटरव्यू को फिर से सुनना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर हमारे फेसबुक पेज SBS हिंदी या इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं. साथ ही आज का सवाल दोहरा देती हूं आपके लिए, अगर आपको एक दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला फैसला क्या होगा? बहुत ही दिलचस्प जवाब भी आ रहे हैं मेरे पास. एक तो आया है प्रदीप कुमार गोहरानी जी का, वो कहते हैं कि अगर मैं पीएम बना तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम रख दूंगा, ऑस्ट्रेलिया द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स. बहुत बढ़िया प्रदीप जी. उसके अलावा चेतन शाह सिडनी से लिखते हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो मैं खरबों डॉलर के कर्ज पर अंकुश लगाता, जीवन यापन की लागत के संकट को प्राथमिकता देता और कोयला आधारित बिजली घरों का संचालन जारी रखता, राष्ट्रीय आवास और किराया रणनीति, आर्थिक सुरक्षा और विनिर्माण नीति को भी लागू करता. चेतन जी, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने भेजा है, बहुत पूरी तरह से सोच समझकर लग रहा है कि आपने जवाब अपना भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और अगर आपने भी अपने जवाब मुझे अभी तक नहीं भेजे हैं तो हमारा नंबर तो आपको पता ही है 0439-799-767. पर अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप भी ब्रेक के दौरान कहीं जाइएगा मत, फिर हम जानेंगे कि परम सुंदरी फिल्म के जो पासेज हैं उनके विजेता कौन है. तो जुड़े रहिए SBS हिंदी पर.
sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ SBS हिंदी पर. दोस्तों, दुनिया भर में इस हफ्ते गणेश चतुर्थी के त्योहार के चलते कई परिवारों ने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया. भारत के पंडालों की चहल पहल से दूर ऑस्ट्रेलिया में गणेश उत्सव अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नई पीढ़ी को जोड़ने का भी अवसर बन गया है. किस प्रकार लोग संस्कार और परंपराएं अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, इसी पर पेश है ये खास प्रस्तुति. मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर मेलबर्न और सिडनी के शांत उपनगरों तक गणेश चतुर्थी का रंग अब ऑस्ट्रेलिया में भी जम चुका है, लेकिन यहाँ यह त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरणीय चेतना और बच्चों की यादों का हिस्सा बन चुका है। भारत में गणपति बप्पा का उत्सव बड़े बड़े पंडालों और विशाल झांकियों से जुड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह उत्सव परिवारों और छोटे समुदायों तक सिमट गया है। भारत और दुबई के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में रह रही जीविका मट्टू बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यह त्योहार उनके लिए किस प्रकार अलग है।
फर्क तो है, अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से और दुबई से, ये त्योहार मुझे भारत में एक जन उत्सव की तरह लगता था। दुबई में एक सामूहिक कम्युनिटी वाइब आती थी, और ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मैं यहाँ ज्यादा निजी, शांत और अपनेपन से भरा हुआ माहौल महसूस करती हूँ।
जहाँ पहले लाल बाग चौराहा और गिरगांव चौपाटी की धूम देखने को मिलती थी, वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के घरों में बप्पा विराजते हैं, छोटे रूप में ही सही लेकिन उतने ही स्नेह और उमंग के साथ। मेलबर्न से कंटेंट क्रिएटर श्वेता सकोड़े, जो पेशे से क्लिनिकल रिसर्चर हैं, बताती हैं कि किस तरह उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद से इस त्योहार को मनाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने पड़े हैं।
जैसे जैसे हमारे हालात और हमारी जगह बदलती है, हमारे सारी परंपराओं में, हमारे सारे ट्रेडिशंस में, हमारे स्टेप्स में काफी बदलाव होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं, एज यू वुड नो कि हमारे पास इतना सामान नहीं मिलता है, हम बहुत जुगाड़ू बन जाते हैं ओवरसीज जाने के बाद। कुछ साल पहले तक तो अच्छी मूर्तियां तक नहीं मिलती थी यहाँ मेलबर्न में, इसलिए हमने एक मूर्ति इंडिया से कुरियर करवाई थी जो एवरी ईयर हम रिसाइकल करते थे। पर इस साल हमें एक बहुत सुंदर इको फ्रेंडली मूर्ति मिल पाई है, जो लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम दैट बापा इन आवर हाउस दिस ईयर। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एज आई सेड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम जैसे होगा वैसे कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारे मन में बहुत श्रद्धा है और मन में बहुत भाव है, सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट।
यह बदलाव केवल आकार का नहीं बल्कि अर्थ का भी है। विदेश की धरती पर यह पर्व समुदाय और अपनापन बांधने का माध्यम बन गया है। जीविका कहती हैं,
हमारे कल्चर में, क्योंकि मैं कश्मीरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, हमारे घर में ये एक दिन का ही त्योहार होता था। जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था वो होता था गणेश चतुर्थी का, जिसको हम विनायक चोरम भी कहते हैं। ये त्योहार एक्चुअली पहला दिन होता है और इसमें हम कुछ खास करते हैं, जिसमें हम बप्पा की पूजा करते हैं और खासतौर पर एक पारंपरिक मिठाई भी बनाई जाती है जिसे हम मीठी पूरी कहते हैं। और अगर मैं कश्मीरी भाषा में कहूँ तो इसको रोट कहा जाता है। इसमें हम मीठी पूरियां बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, गणपति जी को भोग लगाते हैं और फिर वो मीठी पूरियां हम रिश्तेदारों में या दोस्तों में, यहाँ तो मैं रिश्तेदार क्या ही कहूँ, हम दोस्तों में बांटते हैं। वही मैंने अपने घर में बचपन से देखा है कि उसी दिन पूजा होती है, उसी दिन गणपति को पूजा जाता है, मीठी पूरी बनाई जाती है और फिर वो त्योहार खत्म हो जाता है। बट मुझे कुछ शायद और चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने सारे दोस्तों में देखा था कि ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत लंबा त्योहार है। और तो मुझे लगा क्यों ना मैं, क्योंकि हम अपने एक तो कंट्री से अलग रह रहे हैं और घर को भी मिस करते हैं, रिश्तेदारों को मिस करते हैं, तो मुझे लगा ये एक तरीका है जुड़ने का अपने दोस्तों के साथ, अपने खास मित्रों के साथ और अपने कल्चर को आगे पीढ़ियों में बढ़ाने के लिए।
ऑस्ट्रेलिया में हमारे उत्सव मनाने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन भाव अब भी वही हैं। आजकल कई परिवार मिट्टी की मूर्तियां घर पर बनाते हैं और उनका विसर्जन बालकनी, बगीचे या किसी छोटे जलपात्र में करते हैं। डिजिटल दुनिया ने भी इस बदलाव को मजबूती दी है। इंस्टाग्राम पर क्ले आइडल वर्कशॉप से लेकर DIY सजावट तक, नई पीढ़ी के लिए बप्पा का उत्सव अब लाइक और शेयर से भी जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से श्वेता आशा करती हैं कि वो अगली पीढ़ी को अपनी परंपराओं के साथ जोड़ सकें।
मुझे अब 13 साल हो गए यहाँ ऑस्ट्रेलिया मूव होकर, एंड स्टार्टिंग के एक दो साल मन ही नहीं था कुछ करने का, मन मानने को तैयार ही नहीं था कि अब ऐसे ही लाइफस्टाइल एडजस्ट करनी है और ऐसे भी हमें करना है यहाँ पे। पर धीरे धीरे व्हेन आई हैड माय किड्स आई रियलाइज्ड कि अगर हम ही इन फेस्टिवल्स को नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर कैसे मिलेगा। सो आई थिंक नो मैटर व्हाट, आप कहाँ रहते हो, यही हमारा कल्चर है जो हमें इंडिया से दूर रह के भी इंडिया से जोड़े रखता है।
कैसी होती है उनकी गणपति की तैयारी, इस बारे में श्वेता बताती हैं।
मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं पूरी ट्रेडिशनल वे में, जैसे हमारे पेरेंट्स इंडिया में करते हैं, बिल्कुल वैसे स्थापना करूं। बापा की मूर्ति पहले से बुक की जाती है, फिर एक दिन पहले उन्हें घर लाया जाता है, स्थापना होने तक उनका मुख ढक के रखा जाता है ताकि कोई उनका चेहरा ना देखे। चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठो, घर के बाहर रंगोली निकाली जाती है, फिर पूजा सामग्री की तैयारी, नारियल, फूल, फल, मोदक और फिर भोग का खाना, नैवेद्य का खाना बनाया जाता है। एंड ये सब तैयारी होने के बाद अकॉर्डिंग टू द मुहूर्त देन हम स्थापना करके, आरती करके फिर खाने के लिए बैठते हैं।
जहाँ हमारे घरों में तो त्योहारों को मनाने का तरीका थोड़ा निजी होता है, वहीं कुछ सामुदायिक संगठन आपको भारत और भारत के उत्सवों का माहौल और उसका अनुभव कराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लाल बागचा राजा की धुन पर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया चा राजा नामक एक उत्सव मनाया जाता है हर साल, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गणपति उत्सव बन चुका है। उनकी टीम ने SBS हिंदी से बात करते हुए बताया कि किस तरह इस समारोह की शुरुआत हुई और अब किस प्रकार यह समारोह एक बहुसांस्कृतिक रूप ले चुका है। आइए सुनते हैं यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के कपिल चौसालकर, श्वेता राव और जगदीश लखानी से हुई बातचीत का एक भाग। कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश उत्सव ऑस्ट्रेलिया में मनाने का अनुभव भारत से कितना अलग है।
भारत में लालबाग का राजा, वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने 1934 में सामाजिक और शिक्षा आदान प्रदान और उसकी प्रगति शुरू करने के लिए किया था। एक मल्टीकल्चरल फेस्टिवल, एक महाउत्सव इस साल हम मनाने जा रहे हैं। 2016 में जब यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इस उत्सव की शुरुआत की, एक छोटे पैमाने की शुरुआत हुई थी और लोगों की सहायता से 2016 से ये धीरे धीरे बढ़ते हुए इसका परिवर्तन एक महाउत्सव में हो गया। 10,000 से 12,000 लोग 2 दिनों में दर्शन करने के लिए आते हैं गणपति बप्पा के। 2 दिनों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, प्रोसेशन जिसको हम मराठी में मिरवणूक बोलते हैं गणपति जी की, वो निकलती है। ढोल और ताशे बजते हैं, पूजा और आरती होती है सुबह और शाम। यहाँ पे हम लोग शनिवार और रविवार इस 2 दिन पे हम लोग ये उत्सव मनाते हैं।
जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगे कि ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आपने अपनी परंपराओं में इस त्योहार को, इस उत्सव को मनाने के लिए कुछ परंपराओं में भी बदलाव किए हैं।
पिछले 9 साल से जो हम कर रहे हैं सारा कार्यक्रम, तो हर चीज, छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंस होता है, तो हमारी जो टीम है काफी अच्छा काम करती है कंप्लायंस में। तो इतना बड़ा फेस्टिवल आप सोचिए कि भारत में भी करना इतना बहुत मुश्किल होता है, ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है। तो भी सारी टीम लगी हुई है, इतने 150 वॉलंटियर लगे हुए हैं।
जी जगदीश जी, बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं शिकायत करते हैं कि उत्सवों के बाद कचरा या फिर मूर्तियों को जल प्रवाह किया जाता है, जल में बहाया जाता है, वो पर्यावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है। उस बारे में UIOS से क्या कर रहे हैं इस बार?
देखिए, हमारा हर साल से यही, पहले से यही रहा है कि इको फ्रेंडली हम रहेंगे, और जैसे आपने बताया कि गंदगी होती है, फिर कि वो सब नहीं होता है क्योंकि हम बड़े से स्टेडियम में करते हैं, तो उसके लिए भी अलग से हमारी एक टीम लगी होती है, सारी कंप्लायंस की भी होती है उसके साथ ही, कि कोई कचरा ना हो या साफ सफाई रहे हमेशा। तो सारे वॉलंटियर्स पूरे दो दिन तो मैं नहीं कहूंगा, 2 दिन तो एक्चुअल फेस्टिवल होता है, लेकिन उसके अगले दिन और दूसरे दिन भी, यानी कि फ्राइडे से हमारी टीम शुरू हो जाती है काम करना और मंडे तक काम होता है। तो सब कुछ क्लीन होता है, सब चेक होता है क्या होगा कैसे नहीं होगा। और जहाँ तक इको फ्रेंडली आप जैसे कह रहे हैं कि मूर्ति बहाने की उससे पॉल्यूशन या जो भी होता है जो भारत में करते हैं, जैसे करते हैं यहाँ, तो हमें पॉसिबल नहीं है कि हम रिवर में जाके या नदी में जाके बहाएं। तो हम लोग यहाँ पे हम खुद का ही एक बड़ा सा एक पात्र लेते हैं और उसमें सारा विसर्जन करते हैं, और जो मूर्ति होती है इको फ्रेंडली मूर्ति होती है, जो मिट्टी होती है और सारी पिघल जाती है, तो वो पानी फिर हम उसे और जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे है, उसी में यूज किया जाता है। तो टोटल इको फ्रेंडली और सब सारा रेगुलर को ध्यान करते हुए उस तरह से काम करते हैं।
तो बेसिकली पर्यावरण का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं आप। अब श्वेता राव जी भी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, नई पीढ़ी को इस उत्सव के साथ और परंपराओं के साथ जोड़ने के लिए सबसे बड़ी आपको क्या चुनौती लगती है और क्या कर रही है आपकी संस्था उन्हें इन रीति रिवाजों के साथ जोड़ने के लिए?
अपने बच्चों को उस सेलिब्रेशन की जो गहराई है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उन्हें हम उस सेलिब्रेशन का पार्ट कैसे बना सकते हैं, ये हमेशा एक दिक्कत लगी हुई थी। और हमने सोचा क्यों ना बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्यों ना हम गणेश जी के कुछ मंत्र या अथर्वशीर्ष, जो उनका एक बड़ा स्तोत्र है, वो और भजन अगर उन्हें हम इन शामिल करें, उन्हें इन्वॉल्व करें तो कैसा रहेगा। थोड़ा चैलेंजिंग लगा क्योंकि यहाँ के बच्चे सारे इंग्लिश में बात करते हैं, संस्कृत का इतना उनका अभ्यास नहीं होता है, और मंत्र जो है वो सही तरह से बोलना जरूरी है, और यहाँ पर जैसे सिर्फ मराठी बच्चे नहीं होते, तो वी हैव मल्टीलिंगुअल पीपल आल्सो. तो हमने ये चुनौती स्वीकार की और ट्राई किया. उस साल इतना बड़ा जो अथर्वशीर्ष का स्तोत्र था, सारे बच्चों ने एक साथ आकर, थोड़ी दिक्कतें हुई बट द एंड रिजल्ट वाज सो गुड. इस सेलिब्रेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे स्टोरीज के तौर पे, क्यों करते हैं, दुर्वा उन्हें क्यों पसंद है, इसकी शुरुआत कैसे हुई. तो ये सारी छोटे छोटे जो स्मॉल साइज बाइट्स होते हैं हम उन्हें देने लगे. एंड अभी मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे जो अथर्वशीर्ष और आरती ग्रुप के बच्चे हैं, उन सबको आप कुछ पूछोगे तो काफी गहराई का नॉलेज है कि ये सेलिब्रेशन क्यों होता है.
एक मेरा आखिरी सवाल कपिल जी आपके लिए है कि सबसे खास पल क्या होने वाला है इस बार के गणेश उत्सव में.
हमारा 10वां साल इस महाउत्सव का मनाने जा रहे हैं, तो इस महाउत्सव में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. अलग अलग देशों से लोग अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें नेपाल, वियतनाम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, कोलंबिया. और इस साल हमारे जो ढोल ताशा की टीम है, हम जिसको ढोल ताशा पथक बोलते हैं, वो इस बार स्कॉटिश बैकपाइपर के साथ अपनी कला प्रदर्शित करेंगे. उनका फ्यूजन परफॉर्मेंस होगा, जो कि मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण हो सकता है इस बार, क्योंकि हम ये पहली बार करने जा रहे हैं. 50 से ज़्यादा नृत्यशाला के लोग, अलग अलग डांस स्कूल्स, डांस एकेडमीज, कुछ योगा के एकेडमीज हैं, योग साधना के फायदे हमको बताएंगे. और लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे इस बार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारे बच्चे इस बार लीड ले रहे हैं एंकरिंग करने के लिए. उसके बाद रविवार के दिन लगभग 100 जोड़ियां, 100 कपल्स सत्यनारायण की पूजा करेंगे गणपति बाप्पा के सामने. इस साल UIOS इस महोत्सव के दौरान चाइल्डहुड कैंसर एसोसिएशन के लिए फंड्स रेज करेगा. फेस्टिवल एंट्री फ्री है और फूड भी फ्री होता है.
जी, तो देखा जाए तो कोई एक नहीं, बहुत सारे खास पल होने वाले हैं. और वास्तव में आप इस उत्सव को बहुसांस्कृतिक उत्सव की तरह मना रहे हैं. देखना बहुत दिलचस्प होगा और सम्मिलित होना भी बहुत दिलचस्प होगा. SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए आप तीनों का, कपिल जी, श्वेता जी, जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. भारत से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में गणपति का स्वरूप भले ही बदला हो, लेकिन उत्सव की आत्मा अब भी वही है. अलग अलग तरीकों से मनाए जा रहे गणपति उत्सव ने अब एक बहुसांस्कृतिक रूप ले लिया है. अब यह उत्सव एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है. SBS हिंदी पर गणपति विशेष इस प्रस्तुति को आप तक लाई मैं स्वाति शर्मा. चलिए तो अब वो घड़ी जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे गिव अवे के विजेताओं की घोषणा का. इस हफ्ते हम परम सुंदरी फिल्म के डबल पासेस आपको दे रहे थे SBS हिंदी पर, और अब बारी है उनके विजेताओं के नाम की घोषणा करने की. तो एक ड्रम रोल हो जाए. जी हाँ, तो विजेताओं के नाम हैं धर्मिष्ठा पटेल, सिमरन पन, कुलवंत कौर संधु और राजीव मल्होत्रा. राजीव जी, कुलवंत जी, सिमरन जी और धर्मिष्ठा जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपके पासिस बता दूं, आप तक पोस्ट कर दिए गए हैं और आपको जल्द ही मिल भी जाएंगे. तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को. इसके साथ ही दोस्तों, अब हम लेंगे प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे गीतों का सिलसिला. और आपके मैसेजेस भी जो मुझ तक आए हैं वो शेयर करूंगी. और अगर अभी तक आपने अपना जवाब नहीं भेजा है तो नंबर है 04397997. सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे. जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ SBS हिंदी पर. चलिए, इसी बीच आपका एक मैसेज आया है, वो भी पढ़ देती हूँ. मनन कुमार जी मेलबर्न से कहते हैं कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो पहला काम जो मैं करूँगा वो ये होगा कि आई वुड गेट द टीचर्स टू बी पेड वेरी वेल. बहुत अच्छा आपका विचार है मनन जी, आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उसके अलावा मेलबर्न से भी राजेश जी का अभी मैसेज आया है. वो कह रहे हैं कि मैं तो नायक मूवी का अनिल कपूर बनूंगा। जय श्री कृष्णा टू द एंटायर टीम ऑफ SBS। बहुत बढ़िया वीरा जैसी, वो मूवी काफी यादगार थी और उस बारे में तो अभी भी चर्चाएं होती हैं। तो उम्मीद है आप नायक बनकर और अनिल कपूर बनकर कुछ बहुत ही मजेदार करेंगे देश के लिए। सुरेंद्र चापला जी क्रैनबर्न से कहते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ, इफ आई विल बी PM, आई विल ओपन माइग्रेशन फॉर ऑल स्किलफुल पीपल। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। चलिए तो फिर अब प्रोग्राम में गीतों का रुख भी बदलते हैं और प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन अपने आसपास कुछ छोटे छोटे बदलाव करने का मौका तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी क्रांति का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों इसी नोट पर आज के शो से अब मैं विदा लूंगी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको भी आज की मेरी पेशकश पसंद आई होगी। बहुत मजेदार मैसेज भेजे आपने, मुझे तो बड़ा मजा आया उन्हें पढ़कर और उम्मीद करती हूं कि आपको भी आया होगा। कल फिर हम हाजिर हो जाएंगे इसी समय एक नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और जुड़े रहें हमारे साथ SBS हिंदी पर। मैं हूं स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।